Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
अब एक दूसरा भी एक भाव यहां पर श्रुति कहना चाहती हैं, बहुत गहरे अर्थों में कहा ये बात। सका उषण शब्द का प्रयोग करके भी कहा कि आप जो सकाम कर्म करते हैं ना, उसमें विधि में न्यूनता नहीं होना चाहिए, और विधि में यदि न्यूनता आएगी तो आपका कर्म जो फल देने वाला है वो फल नहीं देगा, या तो देगा नहीं और देगा तो विपरीत भी देगा। आपके जो भी सकाम कर्म है ना, वो बहुत सावधानी पूर्वक संपादन किए जाने वाले होते हैं। आपके यहां बहुत सारे उदाहरण हैं, वृत्रासुर का उदाहरण है ना, वृत्रासुर का त्वष्टा ने यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने मंत्र बोला इंद्र शत्रुर विवर्धस्व स्वाहा, ये मंत्र बोला उन्होंने। उन्होंने मंत्र क्या बोला, इंद्र शत्रु और माने इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए, ये स्वाहा कर दिए, देवताओं को स्वाहाकार, और इंद्र शत्रु और ये संस्कृत का प्रयोग कर दिया। लेकिन गलती क्या हुई मालूम है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कोई भाषा है ना, ये आपकी संस्कृत भाषा है। जब हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी पाणिनीय व्याकरण पढ़ते थे, अष्टाध्याय वगैरह, तो उस समय नारायण मालूम पड़ता था कि ये क्या है, क्या है। अरे आपकी संस्कृत भाषा इतनी उत्तम है, 5000 सूत्रों में अष्टाध्यायी, 5000 सूत्र है उसमें, केवल 5000 छोटे छोटे सूत्र हैं, और उन छोटे छोटे सूत्रों में संपूर्ण आपका संस्कृत का व्याकरण, बहुत अद्भुत भाषा। यहां तो स्वर आप उच्चारण कैसे करते हैं और इसके अनुसार भी अर्थ बदल जाते हैं। आपने कभी सुना होगा कि वेद में ऐसे हाथ करते हैं ना, गणा अनंत्वा गणपति, ऐसे ऐसे क्यों करते, क्या दक्षिणा मांगते हैं क्या? क्या आपको मालूम है ऐसे ऐसे करते, आओ आओ दक्षिणा लेके, हैं ऐसा नहीं। ये क्या है, यू यू ऐसा क्या कर रहे हो, ये आपके स्वर हैं, स्वर हैं, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। ये संस्कृत जब आप बोलते हैं ना, जब वेद की ऋचाएं आप गाते हैं तो वहां पर उच्चारण है उदात्त अनुदात्त स्वरित। उदात्त का मतलब होता उच्चैर उदात्त, नीचे अनुदात्त, समाहारः स्वरितः। आप जब मंत्र उच्चारण करते हैं थोड़ा ऊपर की ओर करते हैं तो उदात्त हो गया, और थोड़ा नीचे आ गया तो, और वो बीच में आ गया तो समाहार स्वरितः। तो आप वहां पर ऐसा, आप ऊपर वो मंत्रों में लिखा रहता है, वहां पर ऐसे डॉट्स लगे होते हैं वहां, ये उसका आपने को मालूम नहीं वो कौन सा स्वर उदात्त उच्चारण करना है, वहां पर लिखा है वेद में, वहां रेखा खींची हुई है, नीचे रेखा खींची हुई है, बीच में कोई है उदात स्वर, ये अनुदात स्वर, ये समाहार स्वर। वो ऐसा वो करते हैं ना, तो उदात मन हाथ ऊपर जाता है, अनुदात में नीचे, और समाहार में स्वरित में बीच में, और जो विशेष पंडित होता है वो समझ लेता है कि ये हाथ कहीं ऊपर नीचे इधर उधर तो नहीं हो रहा है, उदात में हाथ ऊपर होना चाहिए, और उदात में जी नीचे गया तो आप गलत उच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि आप उदात में उदात ही होना चाहिए, और यदि उदात में उदात स्वर का उच्चारण नहीं करेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। वो जब इंद्र शत्रु और विवर्धस्व ये जो बोल रहे थे ना, यहां क्या गड़बड़ी हुई मालूम है, शब्द में गड़बड़ी नहीं हुई, यहां स्वर में गड़बड़ी हो गई, यहां स्वर में गड़बड़ी हुई, और स्वर में गड़बड़ी होने से समास में गड़बड़ी हुई, और समास में गड़बड़ी होने से अर्थ में गड़बड़ी हुई। महाराज ये बड़ा अद्भुत प्रकरण है, अपने को तो लगता है कि ये तो हो ऐसा ही, लेकिन इसका गूढ़ गंभीर विज्ञान है। वहां जब वो स्वर उच्चारण कर रहे थे इंद्र शत्रु विवर्धस्व, तो उच्चारण में ह्रस्व उदात अनुदात जो स्वर था उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, स्वर बदल गया, और स्वर बदलने से समास बदल गया, और समास बदलने से अर्थ बदल गया। आपके सामने कई प्रकार के समास होते, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं, जैसे रामेश्वर शब्द है, रामेश्वर शब्द आप जैसे इसका समास करेंगे ना वैसे अर्थ बदल जाएगा। आप रामेश्वर शब्द का कर्मधारय समास करेंगे तो अर्थ निकलता है रामश्च असौ ईश्वरः, जो राम है वह ईश्वर है, कर्मधारय किया तो अर्थ क्या निकला, राम, रामेश्वरम का अर्थ राम ही निकला। कर्मधारय में समान होते, दोनों शब्द समान होते, कर्म रामश्च असौ ईश्वरः बराबर हो गया। और आप इसका यदि तत्पुरुष कर लेंगे रामस्य ईश्वरः, तो तत्पुरुष में आ गया राम का ईश्वर, तो कौन हो गया,
शिव हो गया।
रामस्य ईश्वर, जो राम के ईश्वर है, राम के भगवान कौन है, शंकर भगवान, वो आराधना कर रहे थे रामेश्वर, वो रामेश्वर हो गए। और यही अर्थ आप बहुव्रीहि से निकाल सकते हैं, राम ईश्वर हो यश, राम है जिसके ईश्वर, तो आप भी बन जाओगे रामेश्वर का अर्थ, फिर भगवान शंकर ही नहीं होगा, है ना, राम है ईश्वर जिसका, तो राम ईश्वर किसका है, शंकर भगवान के भी, आपके भी तो है, तो आप सबका नाम हो गया रामेश्वर। ये बहुव्रीहि अर्थ निकला, तो जितने भी राम के भक्त है ना सबको रामेश्वर कहा जाएगा। और इसका तत्पुरुष समास करेंगे तो केवल भगवान शंकर आएंगे, और कर्मधारय करेंगे तो केवल राम। ये समास है, आपको उदाहरण में समझा दिया। अब यहां पर भी इंद्र शत्रुर विवर्धस्व में समास बदल गया भैया, यहां भी इंद्रस्य शत्रुहु इंद्रशत्रुहु, ये कर्मधारय निकलना था, उदात्त स्वर उच्चारण करना था उनको, और उदात्त स्वर उच्चारण करते तो यहां अर्थ निकलता इंद्रस्य शत्रुहु, इंद्र का शत्रु माने इंद्र को मारने वाला, ऐसा पुत्र पैदा हो ऐसा अर्थ निकालना था, थोड़ा अनुदात हो गया। और वो स्वर था ना बदलने से अर्थ बहु समास बदल गया, और समास क्या हो गया, इंद्र शत्रु यस्य, इंद्र है जिसका शत्रु माने इंद्र के द्वारा मारा जाए, ऐसा अर्थ निकल गया। अर्थ होना था कर्मधारय का और निकल गया बहुव्रीहि का, और वहां अर्थ निकला कि इंद्र के द्वारा मारने वाला मारा जाने वाला पुत्र पैदा, उनको तो मालूम ही नहीं पड़ा, अरे ऋषि वो बैठे और बहुत वेद के ज्ञाता है, त्वष्टा कोई सामान्य ऋषि नहीं है, बोल तो दिया इंद्र शत्रु विवर्धस्व, एक छोटी सी मिस्टेक हुई उच्चारण में, शब्द में नहीं, और स्वर भंग से समास भंग हो गया, और समास भंग से अर्थ भंग और दूसरा विपरीत अर्थ निकला, और पुत्र जब पैदा हुआ तो वही पैदा हो गया इंद्र के द्वारा मारा जाने वाला। इसलिए आपको श्रुति कहती है आप सकाम कर्म यदि कर रहे हैं तो आपको सावधानी से कर्म करना चाहिए, आपको विधि विधान से करना चाहिए, आपको दान देना है तो दान देना चाहिए, अच्छा देना चाहिए। आप सत्यनारायण की कथा करते हैं और आप पंडित जी को धोती देना चाहते हैं, आप दुकान में जाके आप कहिए कि हमको पंडित जी को धोती देना है। पूजा का सामान दे दीजिए, दुकान वाले को बोलना वो ऐसी सुपारी देता है कि न आप खा सकते हैं न पंडित जी खा सकते हैं, और ऐसी धोती देता है वो दुकान वाला। जब मुझे कभी इंदौर कभी ऐसे पूछते हैं लोग महाराज कपड़ा आपके लिए, मैं बोलता हूँ वहां उसको ये मत बोलना स्वामी जी को चाहिए। और आपने यदि बोला कि स्वामी जी को चाहिए तो वो ऐसी धोती निकाल करके देगा जो उसके पास कोई खरीद ही नहीं रहा हो, और ये भी बोल देगा, अरे बोलेगा सारे महात्माओं की धोतियां यहीं से जाती हैं। और आप आराम से फिर वो धोती दे देते हैं, क्योंकि आपको तो दान करना है, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि जो दान कर रहे हैं वो सामने वाले के उपयोग में आ रहा है कि नहीं, उसके खाने में आ रहा है कि नहीं, इसलिए ध्यान देना सकाम कर्म में न्यूनता नहीं होना चाहिए, मुझे ये कहना है। सकाम कर्म में हमेशा सावधानी रखनी है। और आप यदि निष्काम है ना, तो निष्काम में वैगुण्य नहीं है। आप निष्काम कर्म कर रहे हैं तो क्या है, निष्काम तो निष्काम। इसलिए भगवान ने बड़ी सुंदर एक बात कही है, निहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। ये श्लोक तो बहुत अद्भुत श्लोक है। या अभिक्रम शब्द का अर्थ होता है कर्म का प्रारंभ, और ये कर्म कौन सा है, निष्काम कर्म, ध्यान देना। यह इस श्लोक में जो भगवान कर्म की बात कह रहे हैं वो निष्काम कर्म की बात कह रहे हैं। आपका जो भी निष्काम कर्म है, प्रेम युक्त अंतकरण से जो संपादित कर्म है, अभिक्रम नाशो न अस्ति, इसका अभिक्रम माने प्रारंभ का नाश कभी नहीं है। अभिक्रम माने प्रारंभ होता है और उसका नाश कभी नहीं होता है। प्रत्यवायु न विद्यते, यहां कोई कमियां आती ही नहीं, प्रत्यवाय होता ही नहीं है। और स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, आप थोड़ा सा भी आचरण करते हैं तो त्रायते महतो भयात्। भगवान बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करते करते आपका यज्ञ तो 5% हुआ और 95% यज्ञ आपका अधूरा रह गया, तो आपका यज्ञ पूरा हुआ क्या? नहीं, आपका यज्ञ खंडित हो गया, अब आपको फल नहीं देगा। लेकिन भगवान कहते हैं कि आपका निष्काम कर्म है और वो निष्काम कर्म थोड़ा सा भी आपने अनुष्ठान किया उसका, आप माला जप रहे थे और माला जपते जपते आप आधी जपे और उसके बाद आधी छोड़ दी, उसके बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो कुछ होगा। यहां भगवान कहते हैं त्रायते महतो भयात्, आपने भले ही आधी माला की लेकिन की ना, निष्काम भाव से आधी माला की है और किसी कारण से आपने माला छोड़ दी, तो आपको अपराध लगेगा क्या? प्रत्यवायो न विद्यते। और ये प्लस होता जाता, अभिक्रम नाशो नास्ति, माने यहां प्लस होता जाता। आप जितना निष्काम कर्म का अनुष्ठान कर चुके होते हैं, आप उतना हमेशा कर चुके होते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होता। इसको आप समझ लीजिएगा, ये जो भगवद गीता है ना, वो तो बहुत ऊंचा ग्रंथ है, बहुत ऊंचा ग्रंथ है। ये एक एक शब्द जब आप इसके गहराई में जाते हैं तब मालूम पड़ता गीता, ओहो क्या गीता है। भगवान बहुत गहरी बात कर रहे हैं। जैसे आप परिक्रमा करते हैं, आप गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, दंडवती परिक्रमा आपने देखा, वहां कामतगिरी में भी होती है, चित्रकूट में दंडवती परिक्रमा करते हैं। आप गिरिराज में जाना हुआ दंडवती परिक्रमा करते हैं, आपने कभी किया क्या? आपको आप घुटने में दर्द हो तो आप जाइए कीजिए, आपके घुटने का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना? घुटने का अभ्यास होता है उसमें, थोड़ा दो चार तो कर ही लीजिए, और क्या है। आप दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं तो आपकी दंडवती परिक्रमा एक दिन थोड़ी पूरी होगी, आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कई दिन आपको लगते हैं। मैं आपको पूछता हूं, दंडवती परिक्रमा जब दूसरे दिन शुरू करते हैं तो आप दूसरे दिन परिक्रमा कहां से शुरू करते हैं? जहां से छोड़ा था वहां से, कि कल जहां से शुरू किए थे वहां से? यदि कल जहां से शुरू किए थे वहां से शुरू करोगे तो कभी दंडवती परिक्रमा पूरी नहीं होगी। आज जहां से छोड़ते हैं ना, वहां से आप शुरू करते हैं। भगवान यही तो कह रहे हैं इस श्लोक में, मैं आपको बहुत सरलता से बता रहा हूं। भगवान कहते हैं कि आप जितना चल चुके होते हैं ना, उतना आप हमेशा चल चुके होते हैं, और आपकी दोबारा जब भी यात्रा होती है तो वहां से आगे, वहां से आगे की यात्रा। आपने आज एक माला जप की है, आज सुबह, मुझे नहीं मालूम आपने की कि नहीं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आप जन्माष्टमी के दिन आज एक माला जप की है, और उसके बाद आपने छोड़ दी 6 महीने के बाद एक माला जपी, कितना? 6 महीने के बाद, तो आपने कितनी माला जपी? और 6 महीने के बाद एक जपी, आप कितनी हो गई? 10 साल के बाद एक माला जपी, फिर 20 साल के बाद एक माला जपी, मर गए। दूसरा जन्म मिला, फिर एक माला जपी, कितनी हो गई? ये गणित है। आपने पांच माला पहले जन्म में जपी थी और इस जन्म में आने के बाद आपने एक माला जपी, तो कितनी हो गई? प्लस हो गया। भगवान कहते नेहा भी क्रमनाशोच थी, यहां कुछ खत्म होता ही नहीं है। आप जितना यहां कर चुके माला कर चुके हाँ, प्लस है। ये निष्काम कर्म है, प्लस सकाम नहीं, सकाम प्लस नहीं होता है, कर्म के बाद खत्म हो जाता है। और जो निष्काम होता है वो कभी खत्म होता ही नहीं है। परम पूज्य महाराज श्रेणी एक बड़ी अद्भुत बात घोषणा के साथ मैंने छपवाए हुए था, एक दो तीन पैराग्राफ्स, मैं इतना खुश हो गया था, मैं घाट को पर सबको बांटा था मैंने। महाराज श्री ने कहा जो मैं आज तुम लोगों को तत्वमसी महावाक्य का उपदेश कर रहा हूं ये तब तक तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा जब तक तुम्हारे अज्ञान को नष्ट नहीं कर देगा। तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा, पीछे पड़ा रहे, इस जन्म में नहीं दूसरे में भी नहीं तो अरे जहां भी आपको पाएगा वहीं आपके अज्ञान को खत्म। ये अध्यात्म का रहस्य है। आप जो शुरू करते हैं, आपने एक बार भी भगवान का नाम लिया तो ले लिया, अब वो आपके अंदर पड़ा है, वो बीज रूप में पड़ा है और समय आने के बाद उगेगा। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आपको सुना देते हैं। आपके सामने धृतराष्ट्र ने कभी अच्छा काम किया है क्या? आप बताओ। अरे गीता भी उसको समझ में नहीं आई, इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी में धृतराष्ट्र को उपमा दी है। क्या? भैंसे की उपमा दी है। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र तो भैंसे की तरह है, और भैंसे की दृष्ट उपमा जो दी है ना बड़ा बहुत आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, रास्ते में दो चार भैंस खड़ी हैं, आपकी गाड़ी अब आगे नहीं बढ़ने वाली, आप क्या करोगे? हॉर्न बजाओगे? कितना भी पोंपो बजाओ वो उठने वाली नहीं है, आपको गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा, फिर गाड़ी से उतरना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसको ठेलना पड़ता है, उसको कुछ थोड़ा प्रेम से थपथपा हो जाने वाली नहीं है। गाय होगी तो चट से चली जाए, लेकिन वो भैंस है, आप उसको ठेल करके आपको रोड से बाहर करना पड़ेगा, तब भी वो जाने के लिए तैयार नहीं रहती है। तो ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा कि ये धृतराष्ट्र जो है ना ये भैंसे की तरह। इतना सारा ज्ञान भगवान का सुना लेकिन टस से मस नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया, ऐसा वैसा, लेकिन व्यर्थ गया। मैं आपको उदाहरण बता देता हूं, व्यर्थ कहां जाएगा? वो भगवान की द्वारा सुना हुआ ज्ञान, वो सारा ज्ञान उसके अंतःकरण में समाहित हो गया। आपने कभी देखा बथुआ की सब्जी खाते हैं क्या बंबई वाले? खाते हैं ना बथुआ की सब्जी, खाते हैं क्या? नहीं खाते हैं। उधर उत्तर प्रदेश बिहार के होंगे तो खाएंगे, इधर के इनको तो मालूम ही नहीं कि बथुआ क्या होता है।
मिलती है?
सरसों के साग में डालते हैं। हाँ 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 ठीक है, सरसों के साग में डालते हैं बथुआ। तो अभी बाजार में है क्या बथुआ?
इस समय नहीं होता है।
वो होता है आपके जाड़े में होता है। और वो सब्जी ना वो बोई नहीं जाती है, अपने आप उगती है, वो जंगली सब्जी है। वो आपके खेत में आप धान बोते हैं गेहूं उसमें निकल आती है, चना बोते उसमें निकल आती है। बथुआ, मैं आपको बथुए का दृष्टांत दे रहा हूं, हाँ समझने के लिए बहुत अच्छा दृष्टांत है। इस समय बथुआ के बीज जमीन के अंदर है कि नहीं? पानी भी बरसा है, आपने खाद भी डाला है और बथुआ के बीज भी जमीन के अंदर है, लेकिन उगते हैं क्या? क्या आश्चर्य है। खाद भी पानी भी भूमि भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने दूसरे भी तो धान बोए हैं, जमीन तैयार की है, लेकिन कमाल एक भी बथुआ का बीज उगा है, एक भी बथुआ का बीज, और वो सड़ता भी नहीं, पड़ा रहेगा। और जैसे जाड़े का समय आता है ना, बिना बोले आप कितना भी उसको बोलो कि भैया मत उगो मत उगो, लेकिन वो मानता, वो भरभराता होगा, भरभराता होगा, छा जाता है खेत में, छा जाता है वो। आज वो जमीन के अंदर है और वो समय की प्रतीक्षा कर रहा है, जाड़े की प्रतीक्षा कर रहा है। आप सत्संग कर रहे हैं, ये सब अब बथुआ का बीज बना है। आप जप कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, वो क्या बन रहा है? बथुआ का बीज सब पड़ रहा है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, आपको ही नहीं मालूम पड़ रहा है कि हम कितना जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लोग बोलते महाराज इतना सब कुछ कर रहे हैं, परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, लग रहा है ना, सब कुछ कर रहे हैं लेकिन कुछ बदलता हुआ मालूम नहीं पड़ रहा है। बदल रहा है लेकिन बथुए के बीज की तरह, आप समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ऐसा समय आएगा। और वहां तो निश्चित है जाड़ा, लेकिन यहां का जाड़ा निश्चित नहीं है, कब आएगा कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है कल ही उगाए, हो सकता है परसों उगाए, हो सकता है इसी समय उगाए। आपके भीतर का जो बीज है, जो ज्ञान है, जो ध्यान है, जो जप है, वो कब प्रकट हो जाए और कब भगवान श्याम सुंदर आपके सामने खड़े हो जाए, आओ भैया। इसलिए आप ये मत सोचना विलंब हो रहा है, मत सोचना। आप वहां पर भी देखो, धृतराष्ट्र ने सुना और वो पृथ्वी के बीज की तरह उसके अंदर वो ज्ञान पड़ा रहा। और जैसे विदुर जी महाराज जी पहुंचे, अवसर उपस्थित हो गया और विदुर जी महाराज ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो, अब तो तुम छोड़ो, आप बूढ़े व्रत हो गए हो और आप वन में चलो और वहां बैठ करके थोड़ा भजन करते हैं, हमारी हिंदू परंपरा है चतुर्थ अवस्था में जाने के बाद संन्यास लेना पड़ता है, लेकिन नहीं मान रहा था वो। अरे रुको बोले, और थोड़ा समय, हाँ रुको अब थोड़ा समय, हाँ थोड़ा समय, और आदमी यही सोचता है थोड़े समय थोड़े समय। लेकिन एक कठोर शब्द का प्रयोग किया विदुर जी ने, ये विदुर नीति में नहीं है, ये विदुर जैसा आदमी और ये शब्द बोल नहीं सकता है। और जो बात विदुर जी बोल रहे हैं वो धृतराष्ट्र के राज्य में कभी संभव भी नहीं है। उन्होंने बोला ये क्या तुम कुत्ते की तरह रोटी खा रहे हो, और ये भीम जब तुमको रोटी खिलाता है तो बोलता है जाओ उस कुत्ते को रोटी खिला के आओ। क्या धृतराष्ट्र के राज्य में ऐसा बोला जाता होगा? कभी नहीं। एक विदुर नीति आई है, विदुर जानता था जब तक उसके मर्म पर मैं प्रहार नहीं करूं तब तक इसको वैराग्य होने वाला नहीं है। ये बोले कुत्ते की तरह रोटी खिलाता है भीम तुमको, बोलता है भीम जाओ उस कुत्ते को रोटी खिला के आओ। जैसे सुना धृतराष्ट्र ने, और धृतराष्ट्र ने पूछा क्या उसने मुझे कुत्ता बोला? हाँ भैया आपको कुत्ता बोला। हाँ बोले मुझे कुत्ता बोला? बोले हाँ भैया आपको कुत्ता। हाँ बोले कुत्ता, और मुझे और भीम कुत्ता बोलते। अब बोले अब मैं इसके भोजनालय में एक ग्रास भी अन्न नहीं करूं, वैराग्य हो गया। क्या चोट लगी वो छतरी और वो विदुर के शब्द चोट कर गए, वैराग्य हो गया, वैराग्य हो गया। और ऐसा वैराग्य हुआ नारायण आज धृतराष्ट्र में कि वहां विदुर को भी नहीं पूछा उन्होंने, आप विदुर पीछे और धृतराष्ट्र, ये उसको बोलते वैराग्य। आपको वैराग्य हो जाए ना तो आप फिर ऐसा भागेंगे, लोग आपके पीछे होंगे। गए सप्त सरोवर, वहां तो संक्षेप में आपको सुना दे, पांचवें दिन उनको समाधि लगी। धृतराष्ट्र को केवल पांचवें दिन में समाधि, वहां लिखा है शरीर भान खो गया धृतराष्ट्र। आहा वही तो ज्ञान था, ये बथुआ का बीज उगाया। इसे भगवान कहते हैं निहाभिक्रमणाशोस्ति, यहां अध्यात्म का जो प्रारंभ है वो कभी खत्म नहीं होता है, उचित अवसर आने के बाद वो प्रकट हो जाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, ये आपका निष्काम कर्म है, निष्काम कर्म कभी खत्म नहीं होता है। और प्रत्यवायो न विद्यते, यहां आप कम भी हो जाए, आपके द्वारा कुछ ज्यादा भी हो जाए, आप भगवान को भोग लगा रहे हैं और भोग लगाते लगाते थोड़ा चख भी लिया तो, अरे प्रेम से चख लिया भैया, देखना था कि तुमको भोग लगा रहे उसमें नमक है भी कि नहीं, खाने के बाद देखोगे पहले क्या। अच्छा आप भगवान को भोग लगाते हो कि भोजन लगाते हो? भोजन लगाना अलग है और भोग लगाना अलग है। भोग लगाना कर्मकांड है और भोजन लगाना प्रेम है। आप यदि भोग लगा रहे हो तो झूठा मत लगाना, और आप यदि भोजन लगा रहे हो तो बिना चखे मत करो। आप भोजन करा रहे हैं, आप स्वामी जी को आप अपने घर में लाके कि आप क्या करते हो, भोजन खिलाते हो कि आप भोग लगाते हो स्वामी जी को? भोग तो नहीं लगाओगे। आप भोजन करा रहे हो, भोजन लगा रहे हैं, तो आप थोड़ा चखो भैया इसमें नमक मिर्ची कुछ, उसके बाद चखोगे क्या? और बाद में मालूम पड़ा इसमें नमक ही नहीं था, स्वामी जी खा के चले गए। प्रेम होता है, वहां आदमी देखता है इसमें सुगंध है कि नहीं, इसमें नमक बराबर है कि नहीं। मां थोड़ा चखके देखते हैं मैं बेटे को खिला रही, उसमें प्रेम है, प्रेम है। जहां प्रेम होता है ना वहां कोई विधि नहीं होती, और जहां कर्मकांड होता है वह सारी विधियां। यहां इसलिए कहते हैं जहां भी सकामता है वहां न्यूनता होती, सावधानी से कर्म करना पड़ता है। लेकिन उषण हवैस सर्व वेदसम ददो, यही दिखाना चाहते हैं, सब कुछ दिया लेकिन आगे कहना है सकाम कर्म था, और इस सकाम कर्म में वैगुण्य आ गया। ये वैगुण्यता का कर्म में कमी को दिखाने के लिए ही यहां उषण हवे वाजश्रव सह सर्व वेद सम ददो ऐसा कहा। ये भी थोड़ा आक्षेप भी किया, अरे बोले उषण सकाम कर्म करने वाला और बोले सर्व वेद सम ददो, विरोधाभास हो गया। जो सकाम भी है वो सर्व वेदस मने सर्वस्व का दान करने वाला बनेगा कैसे? कहीं ना कहीं छोड़ के रखेगा अपने लिए ऐसा। तो सर्व वेद सम ददो लेकिन तस्यः नचिकेता नाम पुत्रास। अब मैं आपको कल सुनाऊंगा, उनका बेटा था एक जिसका नाम नचिकेता था, वो कौन था क्या था, बड़ा गंभीर रहस्यपूर्ण कठोपनिषद है। मुझे तो भैया सबसे अच्छा लगता है कठोपनिषद। तो आज मैं वाणी को विराम देता हूँ, आप लोग सीधे बैठ जाए। आप जन्माष्टमी की सबको राधे राधे, सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं। हरि ओम तत्स, हरि ओम तत्स, हरि ओम तत्स, हरि ओम तत्स।